शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी विश्व राज्य अधिकारी बनना चाहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है, हमारे जीवन का लक्ष्य ही है कि स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हमारा स्लोगन है। थोड़ा साउंड सेट कर लें, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हमारा स्लोगन है और स्व परिवर्तन के लिए चाहिए सच्ची दिल। इसीलिए कहा जाता है सच्ची दिल पर साहब राजी, सच्ची दिल पर साहब राजी कहा जाता है। तो साहब को राजी करने के लिए चाहिए सच्ची दिल। परम पिता परमात्मा को भी सच्चे दिल वाले बच्चे प्यारे लगते हैं। भगवान को भोलानाथ कहा जाता है। भोलानाथ अर्थात जो भोले बच्चे हैं उनका नाथ, उनका स्वामी। तो भोले बच्चे अपने प्यार के बंधन में भी भगवान को बांध लेते हैं। इसलिए भोले बच्चे भोलानाथ को प्यारे हैं। और इस संगम युग पर हमें उस भोलानाथ का इस सच्ची दिल से ही दिल तख्त प्राप्त होता है। संसार में बहुत बड़ी बड़ी महान आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं हैं, साइंस वाले भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में बुद्धि बल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी परमात्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं। लेकिन इस संगम युग पर भोलेनाथ के भोले भोले बच्चों ने सच्ची दिल होने के कारण भगवान को पहचाना। भगवान निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसका ऐसा कोई प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं है। फिर भी बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने, गरीबों ने, घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों ने ज्ञान के नेत्र के द्वारा उसको अनुभव किया। परमात्म प्रेम की पालना का अनुभव किया और उस महसूसता के आधार पर स्वीकार किया कि यही मेरा परम पिता परमात्मा है जिससे मैं जन्मों जन्म से बिछड़ी हुई थी। यही सच्चा प्यार का सागर, ज्ञान का सागर है। और यही इस ज्ञान के द्वारा हमें मनुष्य से देवता, पतित से पावन और नर से नारायण बनाने वाला है, जिसको भक्ति मार्ग में हम पुकारते थे कि हे भगवान आ जाओ, हमें इस दलदल से निकालो, दुखों से मुक्त कराओ। तो वह परमात्मा जब अवतरित हुए तो ज्ञान के नेत्र के द्वारा उन भोले भोले बच्चों ने उसे पहचान लिया। उसको पहचानने और उससे संबंध स्थापित करने का आधार है सच्ची दिल। कहा जाता है कि सच्ची दिल का जो तीर है वो दिल को छूता है। परमात्मा भी सच्चा है, सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है, अविनाशी है। आत्मा भी अविनाशी है, सत्य है। तो उस आत्मा के अंदर में सच्चा प्यार है और सच्चा प्यार, सच्चा सुख, सच्चा आनंद तो एक परमपिता परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। तो वह उस आनंद शांति प्रेम को जो अविनाशी है उसे उन भोले भोले बच्चों ने, हम आप सभी भोले बच्चों ने अनुभव किया। अब तो परमात्मा के परमधाम को वापस जाने का समय आ रहा है, लेकिन हम उसके साथ मिलन मना रहे हैं, उनकी दिव्य शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं, उनकी श्रीमत पर चलकर आज्ञाकारी बनकर उनके दुआओं का पात्र बन रहे हैं। जैसे एक पिता का पुत्र आज्ञाकारी होता है तो पिता अपने पुत्र को, उस आज्ञाकारी पुत्र को ही अपनी प्रॉपर्टी विल करता है, तो वैसे ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को अपनी सर्व प्रॉपर्टी माना सभी प्रकार के गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने, संकल्प के खजाने, खुशी के खजाने और सतयुगी दुनिया का वर्षा सब कुछ हमको विल करते हैं, हमें अधिकारी बनाते हैं। इसका आधार है सच्ची दिल। तो सच्ची दिल के लिए, सच्ची दिल का मतलब क्या है? आज भी जब मुरली चली तब भी हमें ये संकल्प आया, और जब हम पहले भी पुरुषार्थ करते थे तो भी हमें संकल्प आता था कि ये सच्ची दिल का मतलब क्या है। तो हमने आज उसके ऊपर बहुत अच्छा मनन चिंतन किया है और पुरुषार्थ किया है, वही पुरुषार्थ हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो हमने जो अनुभव किया है, सच्ची दिल का मतलब है कि जो हम पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ में जो भी हम उन्नति को प्राप्त करते हैं, या कभी किसी प्रकार से माया के पेपर में असफल भी हो जाते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या का जब हम अपने परम प्यारे प्रिय शिव बाबा को विवरण देते हैं, उसका लेखा जोखा देते हैं, उसका चार्ट देते हैं, तो हम सच्चे दिल से बाबा के सामने रखते हैं, सच सच बताते हैं कि आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा में, संबंध संपर्क में किसको दुख दिया, किसका अपमान किया, किसको रंज दिया, मेरे व्यवहार से किसी को दुख की अनुभूति तो नहीं हुई, या मैंने किसी को दुख नहीं दिया लेकिन किसी के व्यवहार से, किसी की वाणी से मुझे रंज अनुभव तो नहीं हुआ, मैंने किसी प्रकार से दुख का अनुभव तो नहीं किया। यह बातें बाबा के सामने स्पष्ट करना, यही सच्ची दिल है, इसको सच्चाई कहा जाता है। तो जब हम अपना सच्चा सच्चा चार्ट शिव बाबा को देते हैं तो शिव बाबा हमारे ऊपर खुश हो जाते हैं, और जब हम सच्ची दिल से ये चार्ट देते हैं तो हमारे मन में भी खुशी पैदा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्ची दिल वाला है वो खुशी में नाचता है, और जो सच्ची दिल वाला है उसके श्रेष्ठ संकल्प, उसकी जो भी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं हैं, शुभ इच्छाएं हैं, जो मुराद हैं, वो सब पूर्ण होती हैं। सच्ची दिल वाला परमात्मा को सहज ही ज्योति बिंदु स्वरूप में अनुभव कर सकता है। बुद्धि वाले, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, साइंस का ज्ञान रखने वाले, राजनीति का ज्ञान रखने वाले इतनी सहज रीति से परमात्मा को उस जो जैसा है वैसा अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन सच्ची दिल वाले परमात्मा को उसके ज्योति बिंदु स्वरूप में सहज ही अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सच्ची दिल वालों का सच्चा स्नेह होता है, उसे दिलाराम कहा जाता है, दिल वाला कहा जाता है। तो जहाँ सच्ची दिल होती है वहाँ दिल वाला निवास करता है, और वो दिलाराम उस दिल को आराम देता है, उसे भी बड़ा सुकून मिलता है उस सच्चे दिल में निवास करने के लिए। इसीलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि हनुमान सीना फाड़ करके दिखाता है कि राम और सीता और लक्ष्मण तो उसके सीने में ही बसे हुए हैं। ऐसे ही सच्चे दिल वाली सबूरी की यादगार भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तो भगवान से मिले और दूर चले गए, लेकिन सबूरी ने भगवान का प्यार को प्राप्त किया और उसके आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि सबूरी सच्चे दिल से याद कर रही थी, सच्ची भावना से परमात्मा को याद कर रही थी। तो इस तरह से हमारी सच्ची दिल चाहिए। और दूसरी बात है सफाई। तो सफाई में क्या चाहिए कि किसी भी प्रकार का पुराना स्वभाव संस्कार का किचरा न हो। यदि किसी भी प्रकार का किचरा है तो सच्ची दिल नहीं कहा जाएगा। इसलिए स्वप्न में, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, बोल में, व्यवहार में, संबंध संपर्क में स्वच्छता चाहिए, पवित्रता चाहिए, तब हम सच्ची दिल वाले बन सकते हैं। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी मनसा क्या है, मेरी वाचा क्या है, मेरी कर्मणा क्या है। एक दिन में तो हम संपूर्ण नहीं बन सकते, लेकिन जब हम अपने आप पर अटेंशन रखते हैं, अपने आप पर पहरा रखते हैं और महसूसता के द्वारा अपनी कमी कमजोरियों को महसूस करते हैं, तो यह महसूसता ही सच्ची दिल कहलाती है। जो गलती करके भी महसूस ना करे वो झूठा कहलाता है। लेकिन गलती तो सभी के द्वारा कुछ न कुछ होती है, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं हैं, पुरुषार्थ ही जीवन है। लेकिन यदि गलती होने के बाद हम उस गलती को महसूस कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उसको परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो यही हमारी सच्ची दिल है। क्योंकि हमारे मन में प्रश्न उठता था कि हमारे से तो बहुत गलतियां होती है, सबसे कुछ न कुछ गलतियां होती है। बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे रोज कुछ न कुछ पाप कर्म कर लेते हैं, सूक्ष्म में किसी न किसी रूप से। तो फिर हम सच्चे दिल वाले कैसे हुए? लेकिन बाबा ने कहा कि यदि तुम उस बात को रियलाइज करते हो, महसूस करते हो और उसको परिवर्तन करते हो, तो तुम सच्ची दिल वाले हो। और कहा कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। तो इसलिए पहले स्व का परिवर्तन करना है। जब स्वयं का परिवर्तन करेंगे तो विश्व की आत्माएं स्वतः परिवर्तित हो जाएगी। उस दिन जब एक क्लास सूरज भाई जी करा रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक माता का अनुभव सुनाया था कि एक माता जी उनके पास में आई और वो जो है अपने लड़के को बदलना चाहती थी, कि उसका लड़का बात नहीं सुनता था, फोन में मोबाइल में लगा रहता था। माता जी उसको डांटती थी लेकिन वो सुनता ही नहीं था। जब वो सूरज भाई जी के पास आई माता जी, तो सूरज भाई ने जी ने उनको बताया कि देखिए स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। तो जब हम स्वयं का परिवर्तन करेंगे तभी हम दूसरों को बदल सकते हैं। जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, हम अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमारा परिवर्तन नहीं होगा तो हम दूसरों को बदल नहीं सकेंगे। तो उस माता जी ने स्व में परिवर्तन लाया और कुछ समय के बाद उसका लड़का परिवर्तित हो गया। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो पति है वो पति ज्ञान में नहीं चलता है, विरोध भी करता है, लेकिन माताएं जो होती है उसको भू 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 करके मधुबन में ले आती हैं। और जब वो मधुबन में आता है और यहाँ के वातावरण को देखता है, यहाँ के भाई बहनों के व्यवहार को देखता है, यहाँ के निस्वार्थ भाव के प्यार को देखता है, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। और फिर वो घर जाता है और वो उस माता का सहयोगी बन जाता है। तो इस तरह से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, इसलिए हमको स्व परिवर्तन करना है। और बाबा ने दूसरी बात ये कही है कि स्व उपकार तो सब करते हैं, स्व उपकार अर्थात स्वयं का परिवर्तन करना, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम स्व उपकार के अलावा पर उपकार भी करें। पर उपकार का मतलब केवल यह नहीं है कि जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी ग्लानि करता है, उसका ही हम उपकार करें। पर उपकार का मतलब है कि विश्व की सर्व आत्माओं के लिए, उपकार के लिए हम तत्पर रहें। कई लोग कहते हैं हमको, भाई आप क्यों ज्ञान सुनाते हो, आप पहले अपना पुरुषार्थ कर लो, खुद बदल लो अपने आप को। लेकिन हमारे मन में आता है कि बाबा ने कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से चेहरे के द्वारा भी तुम्हें सेवा करना है। बाबा ने आज की भी मुरली में और एक और भी हमने मुरली पढ़ा, उसमें बाबा ने कहा कि आपको यदि किसी भी प्रकार की सेवा का चांस नहीं मिलता है तो आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, और 1 घंटे की जो वाचा की सेवा करते हैं उसका फल जितना नहीं मिलेगा और उससे परिवर्तित नहीं होंगे लोग, लेकिन आपकी 1 मिनट की, 1 सेकंड की जो मुस्कान है, उस मुस्कान से लोगों में परिवर्तन आएगा। तो हमको अपने चेहरे की मुस्कान के द्वारा भी परोपकार का कर्तव्य करना है, परोपकार का कर्तव्य, विश्व कल्याण का कर्तव्य करना है, और इसके लिए चाहिए सच्ची दिल। तो इसमें सच्चाई बताई, फिर दूसरी सफाई बताई कि बुद्धि की सफाई। तो बुद्धि की सफाई में बताई कि लाइन क्लियर होना चाहिए। बुद्धि में यदि व्यर्थ और निगेटिव है तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी, उसमें निर्णय शक्ति नहीं होगी और परखने की शक्ति नहीं होगी। यदि हम माया को परख नहीं सकेंगे तो हम यथार्थ निर्णय नहीं कर सकेंगे, और हम यथार्थ निर्णय नहीं कर सकेंगे तो हम परिस्थितियों में सफल नहीं हो सकेंगे, सफलता हमारा गले का हार नहीं बन सकेगा। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि की भी सफाई करनी है। उसके बाद बाबा ने कहा है, ये हम दूसरी मुरलियों से हमने जो पहले भी चिंतन किया है, पहले से हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं इस सच्चे दिल के ऊपर में, तो उससे हम आपको बता रहे हैं कि बाबा ने कहा, एक तो तन की सफाई, मन की सफाई, दिल की सफाई और संतुष्टता की, संबंधों की सफाई। तो तन की हम सफाई कैसे करें? तो तन को तो सभी लोग स्नान करते हैं, सभी लोग तन के ऊपर में अच्छे कपड़े पहनते हैं, साबुन से नहाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रीम पाउडर जो भी है वो लगाते हैं तन की स्वच्छता के लिए। लेकिन बाबा ने जो अलौकिक तन की स्वच्छता करने का तरीका बताया है वो ये है कि पूरे दिन में भी हर कर्म करते हुए, स्नान करते हुए, शौच करते हुए, खाना खाते हुए, कभी भी हमको यह स्मृति रखना है कि ये मेरा तन जो है वो एक मंदिर है, और इस मंदिर में मैं आत्मा एक हीरा हूँ, मैं हीरा इस भ्रकुटी में चमक रही हूँ। जब हमको ऐसी श्रेष्ठ स्मृति रहेगी तो जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तो जब हम समझेंगे ये मंदिर है, क्योंकि मंदिर की स्मृति से हमारी भावना भी श्रेष्ठ, स्वच्छ, शुभ, पवित्र हो जाएगी, तो इस भावना से हमारा शरीर स्वच्छ होगा, शरीर की सफाई रहेगी। बाबा ने तो कई बार कहा है कि जब आप सोने के लिए जाते हो तो पैर हाथ बहुत अच्छी तरह से धोकर के साफ करके रखो, क्योंकि भक्त लोग तुम्हारे चरणों को धोकर के उसका चरणामृत पिएंगे। तो यदि तुम्हारे पैर गंदे रहेंगे तो भक्त लोग गंदे पैरों का थोड़ी चरणामृत पिएंगे। इसलिए अपने हाथ पांव भी बिल्कुल स्वच्छ रखो, हर अंग अंग को कर्मेंद्रियों को स्वच्छ रखो। तो इस तरह से जब हम स्मृति रखेंगे कि मुझ आत्मा का, मैं आत्मा एक हीरा हूँ, मैं आत्मा एक मूर्ति हूँ और यह शरीर मुझ आत्मा का मंदिर है, तो इससे हमारे शरीर की सफाई होगी। दूसरा, मन की सफाई। तो मन की सफाई के लिए कहा गया है कि मन भी एक मंदिर है और इस मंदिर में जो है वो परमात्मा बैठता है। उस मूरत को, मन रूपी मंदिर में परमात्मा की मूरत को बैठाना है। परमात्मा की मूरत को कैसे बैठाएंगे? भक्ति मार्ग में तो हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो हम किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्मृति में लाकर उसको दिल में बसा लेते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में भगवान को दिल में बसाना अर्थात भगवान को सदा निरंतर याद करते रहना, मन को मन मना भव स्थिति में, मध्याची भव स्थिति में रखना, यही है मन की सफाई। मन में किसी भी प्रकार का कि अस्वच्छता न हो, निगेटिव संकल्प न हो, व्यर्थ न हो, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत बदले की भावना के संकल्प न हो, तब जब हमारा मन शुद्ध होगा और केवल एक परमात्मा की याद में, स्वचिंतन आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन में हमारा मन लगा रहेगा, तो हमारा मन, हमारे मन की सफाई होते रहेगी। वैसे ही कहा कि दिल की सफाई, तो दिल की सफाई के लिए दो बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, है दो बातें, छोटी सी बातें लेकिन हमारे पुरुषार्थ को बहुत हाई जंप देने वाली है, बहुत तीव्र उड़ाने वाली है। तो इस बात को गांठ बांध लेनी है और सदा स्मृति में रखना है। दिल की स्वच्छता क्या है, दिल की सफाई क्या है? तो जो हम स्व उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ को मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस तरीके से मैं पुरुषार्थ करता हूँ, मेरे से गलतियाँ हो रही है या मैं उन्नति को प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमी कमजोरियाँ हैं, है ना, वो सभी बातों को परमात्मा के सामने में स्पष्ट रखना, ये है सच्चाई, दिल की सच्चाई सफाई। और दूसरा है, जब हम सेवा करते हैं, क्योंकि हर आत्मा, चाहे वो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, चाहे समर्पित हैं, चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे बिजनेस करने वाले हैं, जो अपना अपना कर्म क्षेत्र है वो सभी का सेवा स्थान है। तो हम जो सेवाएं करते हैं वो सेवाएं हम कर्तव्य समझ के करते हैं या केवल ड्यूटी समझ करके काम उतारने के लिए करते हैं? यदि हम पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण निमित्त भाव से, करण करावन हार की स्मृति से कि मैं ये जो भी कर्म मुझे मिला है, चाहे मुझे घर में खाना बनाने की सेवा मिली है, चाहे मेरी दुकान है, चाहे मेरी ऑफिस है, चाहे मैं कर्मचारी हूँ, मैं सर्विस करता हूँ, चाहे मैं समर्पित हूँ, जो भी हमको कर्तव्य मिला है, यह करण करावनहार परमपिता परमात्मा हमसे करा रहे हैं। मैं आत्मा तो निमित्त हूँ, जो समर्पित हैं वो निमित्त समझे और जो घर गृहस्थ में रहने वाले, संसार में रहने वाले हैं, वो समझें कि मैं ट्रस्टी हूँ। तो इस भावना से यदि हम सेवा करते हैं, सच्चे दिल से सेवा करते हैं और निर्माण चित्त होकर के सेवा करते हैं, निरअहंकारी बनकर के सेवा करते हैं, तो यह हमारी है सच्ची सेवा। इसमें सरल स्वभाव से, शांत प्रिय होकर, बहुत ही नम्रता से और मधुरता से हम यदि सेवा करते हैं, दिल लगा करके सेवा करते हैं जिसको कहा जाता है, तो हमारे सेवा के 100% मार्क्स जमा होते हैं। निस्वार्थ भाव की सेवा, बिना कामना की सेवा, सर्व के कल्याण और विश्व की कल्याण की भावना से यदि हम सेवा करते हैं तो यह है हमारी दिल की सफाई। और चौथी बात है संबंधों की सफाई। हर व्यक्ति चाहे एक पति पत्नी ही है या एक छोटा सा परिवार है, जब हम ऑफिस में जाते हैं, धंधा बिजनेस में जाते हैं, कहाँ पर भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो जिनके भी हम संबंध संपर्क में आते हैं तो उनके द्वारा हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो हमसे संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं, मैं उनसे संतुष्ट हो रही हूँ या नहीं, ये है संबंधों की सफाई। तो वैसे भी बाबा ने कहा है कि तीन प्रकार के सर्टिफिकेट लेना है, एक स्वयं से, एक ब्राह्मण परिवार से और एक परमपिता परमात्मा से। तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनसे हमें संतुष्टता की अनुभूति होनी चाहिए और हमारे हर कर्म बोल व्यवहार के द्वारा उन्हें संतुष्टता की अनुभूति होनी चाहिए। यदि संतुष्टता की अनुभूति हो रही है तो हमारे संबंध ठीक है, हमारे संबंधों में सफाई है। तो यही है सफाई, सच्चाई और सफाई। इस सच्चाई और सफाई के द्वारा ही हम उस दिलाराम दिलवाले बाप को राजी कर सकते हैं। और सच्चे दिल वाले ही प्रभु प्रिय होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं, वो कभी भी छुपे हुए नहीं रह सकते, उनको सबका प्यार मिलता है। और वैसे भी कि भगवान को भी गाली देने वाले हैं तो हमको भी एक दो तो होंगे गाली देने वाले, इसलिए उसकी परवाह हमें नहीं करना है। लेकिन बाबा ने कहा है कि यदि 95% भी आपको यदि सर्टिफिकेट मिलता है तो आप पास है, 5% की छूट है। तो ये हो गई हमारी सच्चाई और सफाई। तो जो सच्ची दिल वाले हैं उनके ऊपर भगवान मेहरबान होते हैं, भगवान की दुआएं उनको मिलती है, क्योंकि सच्ची दिल वाले ही भगवान के आज्ञाकारी हैं और आज्ञाकारियों को ही भगवान की दिल की दुआएं मिलती है। और ये दिल की दुआएं हर विघ्न और परिस्थितियों से, समस्याओं से हमें पार कराता है। जो सच्ची दिल वाला है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, वह परमात्मा को सहज ही ज्योति बिंदु स्वरूप में याद कर सकता है। जो सच्ची दिल वाला है वो सदा खुशी में नाचता है, उसके संबंध संपर्क में सभी आत्माएं उसको अपने पास बिठाती हैं, उसके साथ रहना पसंद करती हैं। इसलिए कहा जाता है सच तो बीठो नच। जीवन में समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन जो सच्चाई वाला है, जो सफाई वाला है, उसकी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि उसकी नैया का खिवैया कौन है? उसकी नैया का खिवैया सच्चा साहब है, इसलिए उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती है। तो इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम इन ज्ञान को, राज को जानकर, और सच्ची दिल वाला राज युक्त होगा, योग युक्त होगा, युक्ति युक्त होगा, उसका हर कर्म योग युक्त होगा। जब योग युक्त होगा तो राज युक्त होगा, क्योंकि जो सच्ची दिल वाला है वो ज्ञान की समझ के द्वारा हर राज को जानता है, इसलिए वो हर कर्म को युक्ति युक्त करेगा, इसलिए उसमें हमेशा कर्म में सफलता की अनुभूति होगी। उसकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होने के कारण उसके अंदर परखने और निर्णय करने की शक्ति होगी और इसलिए वो सदा सफलता को प्राप्त करेंगे। सच्चे दिल वाले सदा हल्के रहेंगे, कभी बोझ का अनुभव नहीं करेंगे। यदि दिल शिकस्त हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं तो भी सच्ची दिल नहीं है, बाबा कहते हैं इस बात को। इसलिए हमें सदा यह स्मृति में रखना है कि चाहे बाबा कहते हैं कि ये प्राण भी चले जाए लेकिन हमारी खुशी न जाए। तब हम कहलाएंगे सच्ची दिल वाले। और सच्ची दिल वाले दिलाराम के दिल में होते हैं, उन्हें दिलाराम का दिल तख्त नसीन होता है, उनको दिल तख्त मिलता है। वैसे भी शिव बाबा ने कहा है कि एक है परमात्मा का दिल तख्त, दूसरा है तुम आत्माओं का इस शरीर का भ्रकुटी रूपी तख्त, और तीसरा है विश्व का राज्य तख्त, और चौथा है एक और बाबा ने बताया है साक्षीपन का तख्त। ये चार तख्त पर विराजमान जब रहेंगे तो सच्चे दिल से साहेब को राजी कर सकेंगे, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करते हुए परोपकारी बनकर सर्व का कल्याण करते हुए अपने लक्ष्य पर सहज ही पहुंच सकेंगे। जो सच्ची दिल वाला है वो उसकी कथनी और करनी एक समान होगी, जो कहेगा वही करेगा, अंदर बाहर एक होगा। जैसे कहते हैं बाहर की दुनिया में कि जो व्यक्ति एक अंदर एक और बाहर दूसरा होता है वो बड़ा खौफनाक होता है, वो सामने कुछ बोलेगा नहीं लेकिन पीछे से पीठ में कब खंजर भोंक देगा उसका कोई विश्वास नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो पर निंदक है, पर चिंतक है, उससे भी खौफनाक है जो बहुत चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है लेकिन अंदर कुछ होता है, ऊपर से मीठा मीठा बोलता है लेकिन अंदर उसकी भावना कुछ और होती है, तो ऐसे खौफनाक व्यक्ति के लिए बाबा ने कहा है कि ये ब्राह्मण परिवार में भी बड़ा ही घातक होते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए जो है हमें अपने मन को, अपने तन को, अपने संबंधों को स्वच्छ बनाना है, सच्ची दिल से शिव बाबा को राजी करना है, और जो कहना है वही करना है, जो सोचना है वही बोलना है, जो बोलना है वही करना है। तो कथनी और करनी एक रख करके जब हम संबंध में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, तो लोगों की हमको दुआएं मिलेगी। और सच्चे दिल वाला सदा नम्रता वाला होगा और उसका स्वभाव बहुत सरल होगा, सरल स्वभाव वाला होगा, देह अभिमान और देह अपमान की भी फीलिंग नहीं करेगा, वह सहज ही अपने आप को परिवर्तन कर लेगा, वह रियल गोल्ड होगा, अपने आप को मोल्ड कर लेगा। ये है सच्चे दिल वालों की निशानी, और सच्चे दिल वालों की विशेषता है कि वह नम्र होगा, सहनशील भी होगा। तो इस तरह से हम सच्चे दिल वाले बनकर, सच्चे दिल का पुरुषार्थ करके और सच्चे साहब को राजी करके अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। प्रश्न पूछ रहे हैं वो बोलिए।
आपने कहा सच्चे दिल पर साहब राजी,
हाँ,
तो जो झूठे हैं क्या भगवान उससे नाराज रहते हैं?
भगवान झूठे लोगों से नाराज तो नहीं रहते, लेकिन किससे नाराज रहते हैं? जैसे हमने आपको अभी बताया कि सच्ची दिल वाला कौन है। देखो, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलती करने के बाद में जो अपनी गलती को महसूस कर लेता है और उसको परिवर्तन करता है, वो सच्ची दिल वाला है, समझ गया ना। लेकिन जो गलती करके भी महसूस नहीं करता, परिवर्तन नहीं करता, अपनी बात को जिद्द और सिद्ध करता है, वो उसके ऊपर भगवान राजी नहीं होते, समझ गए ना। देखो, हम भी जब ज्ञान में आए तो क्या हम पूरे तरह से हम साफ दिल स्वच्छ दिल थे? हमको तो ज्ञान अभी भी कितनी कमी कमजोरियां है और उनको निकालने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। लेकिन सच्ची दिल का अर्थ क्या बताया बाबा ने कि अपनी गलतियों को महसूस करना, जो हूँ जैसा हूँ वैसा, और फिर उसको परिवर्तन करना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, तो भगवान उसके ऊपर नाराज नहीं होते। बाबा तो कहते हैं ना कि सभी मेरे बच्चे हैं, माया भी मेरी बच्चे है, रावण भी मेरा बच्चा है, जो आतंकवादी है, ये जो चोर ढोर है, जो भी दुख देने वाले लोग हैं, अत्याचारी पापाचारी, ये भी सब मेरे बच्चे हैं, पर क्या कर सकता हूँ, सबका अपना अपना पार्ट है ना। तो जो रियलाइज करता है अपनी गलती को, उसके ऊपर भगवान ना खुश नहीं होते, उनसे नाराज नहीं होते, और सच्ची दिल वाले वही है जो अपनी गलतियों को महसूस करते हैं और उसका परिवर्तन करते हैं।
कोई गलती हो जाती है तो कहा ना सच्ची दिल से बताओ।
हाँ,
तो कहाँ बताए,
देखो आप कोई मनुष्य को बताएंगे नहीं, कोई मनुष्य को बताएंगे, मनुष्य को बताएंगे तो वो आपकी मजाक उड़ाएगा, ठीक है, और वो दो चार लोगों को भी जा करके बताएगा, भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है करके बताएगा, आपकी और निंदा करेगा, गाली करेगा, आपका की बदनामी करेगा। तो बाबा ने बहुत ही सहज युक्ति बताई है कि बच्चे आप पत्र लिखो बाबा को, और उस पत्र में क्या लिखना होता है, यही दिल की बातें लिखनी होती है ना, उसमें अपनी कमी कमजोरी को लिखो कि आज मेरे से ये गलती हो गई बाबा, ये है। तो इससे क्या होगा, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, आपके क्वेश्चन पूछने से मुझे याद आ गई, कि बाबा ने कहा है कि कोई बात यदि दिल में रखेंगे ना तो वो कभी ना कभी गुब्बारे के रूप में निकलेगी वो फिर गुस्सा के रूप में कहाँ ना कहाँ भड़ास निकल जाएगी। तो इसलिए जो है आप बाबा को लिख दो, उससे क्या होगा, आपकी दिल हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी ना, तो फिर बाबा का प्यार उसमें समा जाएगा, बाबा की याद समा जाएगी। और आपने बताया नहीं बाबा को सच्चे दिल से, लिखा नहीं पत्र में, माने ये तरीका है कि भगवान को सच्चे दिल से अपनी बात बताने का, पत्र लिखना। तो आपने यदि नहीं बताया तो क्या होगा, वही वही संकल्प चलेंगे, वही वही चिंतन चलेंगे, वो फिर आप आवेशित होते रहेंगे, उत्तेजित होते रहेंगे, है ना, कभी क्रोध भी आ जाएगा। तो ये फायदा है भगवान, और केवल हमको भगवान को ही बताना है, इसलिए तो भगवान को साथी बनाना है ना, कंपेनियन भगवान को बनाना है, कंपेनियन कंपनी भगवान की रखनी है, ये संगम युग ऐसा युग है, इसलिए तो भगवान आते हैं ना। देखो कि सतयुग त्रेता द्वापर में तो कभी भगवान ने आकर के कोई हस्तक्षेप नहीं किया, वहाँ पर भी जब हम थे तो लोगों से धोखा मिलता था तो हम भक्ति करते थे, और कभी कृष्ण को, राम को, हनुमान को, किसी न किसी को अपना साथी सखा बनाते थे ना, है ना। तो अभी वर्तमान समय में स्वयं परमात्मा अवतरित हुए हैं, और अवतरित होकर के वो साथ दे रहे हैं। तो परमात्मा ने क्या कहा कि सभी संबंध दुख देने वाले हैं इस कलयुग के, तो इसलिए जो है आप सर्व संबंध परमात्मा से करो। अब परमात्मा तो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, उससे कैसे संबंध, तो हमारा संबंध है संकल्प के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उससे जोड़ना और मन की बातें करना, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो आप बहुत उन्नति को प्राप्त करेंगे।
हमसे कोई गलती हो गई,
हाँ,
हम चिट्ठी लिख करके रख देते हैं,
हाँ,
बाबा के आगे,
हाँ,
तो क्या वो माफ हो जाता है।
देखो जो कर्म कर लिए उस कर्म का तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, लेकिन ये वो होता है कि उसका जो दंड बहुत ज़्यादा मिलने वाला था ना, बहुत ज़्यादा मिलने वाला था, बहुत कड़क आपको पनिशमेंट मिलने वाला था, उसमें कमी आ जाएगी, और आप जब उस पनिशमेंट को भुगतेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि मैं कोई पनिशमेंट भुगत रहा हूँ, मुझे कहाँ से मदद मिल रही है, ऐसी आपको अनुभूति होगी। ये चीज़ है सच्ची दिल बताने, जैसे हम कभी भी कोई, जैसे हम, मैंने कोई गलती कर लिया लेकिन मैंने सच्ची दिल से जाकर के किसी बड़े को बता दिया, मैंने उसको सॉरी बोल दिया, तो क्या होगा, वो वैसे ही ठंडा हो जाएगा, माफ़ कर देंगे, बोलेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप अपने आप को परिवर्तन कर लो और आगे के लिए थोड़ा आप सचेत रहो, ठीक है ना। लेकिन मैं गलती भी कर लूँ, फिर जाकर के मैं बड़े लोगों के पास में मैं अपनी बात को सिद्ध भी करता रहूँ, और लोग जाकर के मेरी कंप्लेन करेंगे बताएंगे, तो मैं वहाँ पर भी जिद करता रहूँ, सब लोगों को खराब बोलता रहूँ, तो क्या होगा, फिर बड़े लोग, फिर और वहाँ पर हमारा पनिशमेंट बढ़ जाएगा ना। यदि गलती नहीं भी रही और कई बार बाबा बोलते कि झुक जाओ, है ना, झुक जाओ, गलती नहीं भी तुम सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते, आज के स्लोगन या कल के स्लोगन में था ना कि सत्य अपने आप सिद्ध होता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो आप गलत नहीं है तो सिद्ध शांत रह जाओ, तो क्या होगा वो सब भी शांत हो जाएंगे और आपकी जो परिस्थिति है जो समस्या है ना वो पार हो जाएगी।
अगर हम सच्चाई को छिपाते हैं
हाँ
तो क्या नुकसान होता है?
कौन सी सच्चाई को छुपाते हैं?
कोई गलती किया हम बताते नहीं।
हाँ बताते नहीं तो वो क्या होगा वो अंदर के अंदर और बढ़ती जाएगी, जो गलती है वो बढ़ती जाएगी। बाबा ने कई बार कहा है कि बीमारी वो बढ़ती जाएगी, और तुम बाबा के पास में बता देंगे ना तो तुम हल्के हो जाएंगे, वो बाबा ले लेगा, बाबा ले लेगा और आपके वो दिल से निकल जाएगी, इसलिए छुपाना नहीं चाहिए। समझ गए ना? आप छुपाए रखेंगे तो वो बढ़ती जाएगी बढ़ती। आज आपने एक गलती की, फिर दो बार करेंगे, फिर पांच बार करेंगे, फिर दस बार करेंगे, और ऐसे वो गलती बढ़ती जाएगी, फिर वो संस्कार बन जाएगा। समझ गया ना? लेकिन एक बार जैसे हमने बाबा को बता दिए ना तो क्या वो हमारे मन से निकल गई, वो चले गई उनके पास, तो हल्का हो जाएगा, फिर वो गलती उतने फोर्स से आएगी नहीं आपके पास। कोई विकार भी है, कोई भी चीज ऐसी है, कोई ऐसा संस्कार है तो वो फिर ठंडा होता जाएगा। और दूसरा फिर योग अग्नि से भी उसको हमको ऐसा नहीं केवल बता दिए बस बता दे के हो गया, नहीं, बताने के बाद हमको उसके ऊपर पुरुषार्थ भी करना है, योग अग्नि को बढ़ाना है, योग अग्नि में उस संस्कार को दग्ध करना है, तो हमारे में परिवर्तन आएगा। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं कि तुमने बता दिया तो 50% तो ऐसा ही माफ हो गया। माफ होने का मतलब क्या है कि हल्का हो जाएगा, है ना? जैसे हमने अभी आपको उदाहरण बताया ना कि भाई बड़े लोगों के पास में हम जाकर के जिद करेंगे सिद्ध करेंगे तो वो फिर हमारी बात को मानेंगे, और गलती नहीं भी और थोड़ा भी यदि हम छोटे बन गए ना तो भी वो माफ कर देंगे और आपके मददगार आपकी रक्षा करेंगे। ये हमारे भी जीवन का अनुभव है, ठीक है ना? और कुछ संतुष्ट? ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चल अच्छा जी, ओम शांति, गुड नाइट सभी भाई बहनों को, मधुबन से, बाप दादा के घर से, हिस्ट्री हाल से, चारों धाम से बहुत बहुत प्यार भरा याद प्यार स्वीकार हो। खुश रहो, मस्त रहो, और ऐसा ही श्रेष्ठ चिंतन करके जब सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह अमृत वेले भी जब उठेंगे तो बहुत हल्के होकर के उठेंगे और बाबा से बहुत अच्छा योग लगा रहेगा और बहुत खुशी की अनुभूति होगी। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।
बहुत बढ़िया।